ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत स्पेन के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की दो दिवसीय भारत यात्रा भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से इसलिए अहम समझी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने कल गुजरात के वडोदरा में जहां एक तरफ सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, वहीं शिष्टमंडल स्तर की दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई, द्विपक्षीय समझौते हुए और कई व्यापारिक इस मामले में सहमतियां और समझौते भी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहे हैं। तो भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये भारत दौरा है और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में एक विशेष दौरे पर स्पेन गए भी थे। तो आज हम भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर गुलशन सचदेवा कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
जी शुक्रिया।
तो सबसे पहले तो हम स्पेन के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के महत्व और दोनों देशों के बीच में जो ये द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई सहमतियां और समझौते हुए हैं इन पर आपसे बात करें, तो क्या प्रमुख आपको बिंदु नजर आए इन दो दिनों की इस यात्रा में और दोनों देशों के बीच हुए इन सहमतियों में?
आपने बिल्कुल सही कहा कि 18 साल के बाद वहां के प्रधानमंत्री की यहाँ पे एक यात्रा हुई है और भारत के इनफैक्ट मोटे तौर से देखें तो भारत के जो संबंध हैं यूरोप के देशों के साथ पहले से बहुत गहरे हुए हैं और स्पेन आप जानते हैं कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोप के अंदर, यूरोपीय संघ के अंदर फ्रांस जर्मनी और इटली के बाद चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कई सालों में खासतौर से जो पेंडेमिक के बाद से इसकी जो ग्रोथ है वहां की स्पेन की वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है और बाकी यूरोजोन के देशों से भी कहीं इसकी ग्रोथ पहले से ज्यादा हुई है। और अभी जो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस हैं उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है, जिस तरह से उन्होंने स्पेन को काफी आगे बढ़ाया है यूरोपियन प्रोजेक्ट के अंदर और जिस तरह से उन्होंने कई विदेश नीति के मुद्दे हैं, चाहे वो इसराइल का मामला हो चाहे वो चीन का मामला है, उसमें वो काफी अग्रसर होकर अपनी एक स्पेन की अपनी एक सोच रखते हैं और उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि वो भारत की यात्रा भी उन्होंने की है और भारत के साथ भी अपने संबंधों को बहुत गहराना चाहते हैं। और स्पेन जिस तरह से उन्होंने कहा अपने भाषण में भी यहाँ पे, वो एक पूरी एक ट्विन ट्रांजिशन वहां पे चल रही है स्पेन के अंदर, उसमें वो एक ग्रीन ट्रांजिशन में अपने आप को आगे देखना चाहते हैं और पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे इकोनॉमी का हो रहा है और वो जानते हैं जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था है, हम जानते हैं कि G20 के देशों में सबसे तेजी से जो बढ़ रही अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसी तरह से यूरोपीय संघ की जो देश है उसके अंदर जो तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है वो स्पेन की अर्थव्यवस्था है
जी।
और वो जो हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी अपनी ग्रीन ट्रांजिशन के हमारे जो अपने उद्देश्य हैं उनको साथ जोड़ते हुए किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ पाए, यही शायद मुझे लगता है उनका एक इस यात्रा से एक मुख्य तौर से एक मुद्दा निकल के आता है
जी।
और आपने जैसे बताया कि कई समझौते यहाँ पे हुए हैं, 7-8 समझौते उसमें हुए हैं और खासतौर से जैसे रेल ट्रांसपोर्ट का है, स्पेन की जो हाई स्पीड ट्रेन है उन्होंने नई काफी ट्रेन वहां पे चलाई है तो उससे भी भारत के रेल के साथ एक समझौता होने से अच्छी संभावनाएं बनती हैं। और जिस तरह से हमने ये देखा है कि यूरोप के बाकी जो देश हैं वो आजकल जो पॉलिटिकल मूड है वहां पे इमिग्रेशन को देख के काफी देश जो है वो चिंतित हैं, लेकिन स्पेन में और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर सांचेज ने जो है इनकी सोच बिल्कुल अलग है उनसे और ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो अगर स्पेन में आते हैं और भारत के मूल के लोगों को खासतौर से अभी ऑलरेडी 70,000 लोग वहां पे रहते हैं, वो चाहते हैं कि जो और भारतीय मूल के पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे आए तो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी की है और जो भारत के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको अगर जोड़ के देखते हैं तो दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है और ये भी चीजें जैसे हमने ये देखा कि सबसे बड़ा जो उनका कार्यक्रम था जो टाटा के साथ नया जो विमान बनाने का जो असेंबली लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया था वहां पे और हम जानते हैं कि स्पेन से भारत ने एयरबस से वो खरीदे हैं उसमें से कुछ आ गए हैं, बाकी सारे जो 30-35-40 विमान है वो यहीं पे बनेंगे और 2 साल के अंदर पहला विमान वहां से निकल आएगा और आने वाले सालों में बाकी 40 विमान भी यहाँ पे बनेंगे। तो
बिल्कुल
ये एक तरीके से सिर्फ एयरबस की तरफ भी हम देखते हैं तो वो सिर्फ स्पेन की कंपनी नहीं है, एयरबस हम जानते हैं कि वो यूरोपियन कंपनी है, उसमें जर्मनी फ्रांस स्पेन भी हिस्सेदार हैं और यूके भी उसके अंदर हिस्सेदार हैं। तो जिस तरीके से भारत के संबंध यूरोपीय संघ के देशों के साथ हुए हैं, पूरे यूरोप के साथ हुए हैं, उसका पूरा मुझे लगता है कि इस उनकी जो यात्रा है उससे हमारे संबंध पहले से और प्रगाढ़ हुए हैं। जी
अपने संबोधन में कल प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास गति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विस्तार दे रहे हैं।
हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1,000 नए डिफेंस स्टार्टअप बने हैं।
जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ उसकी बात की, तो इस संबंध में आपसे जानना चाहूंगा जो सैन्य विमान की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए निजी क्षेत्र की ये पहली फाइनल असेंबली लाइन कही जा रही है। और इस अवसर पर जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा भी कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो वैश्विक जो विमान का क्षेत्र है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक भरोसेमंद साझेदारी के रूप में ये भारत की स्थिति को और मजबूत बनाता है। तो कैसे इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप देखते हैं और खासतौर पर इससे मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिलेगा और भारत और स्पेन की साझेदारी कैसे और मजबूत होगी?
उसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जो हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का है, मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें एक ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें हमने विमानों को जो बनाने की जो बात है, हालांकि उसका एक मेन इंजन एयरबस से आएगा, लेकिन बाकी जो सारे उसके कलपुर्जे हैं, जो पूरा इकोसिस्टम जो तैयार किया जाएगा, उसका लंबे समय में, आने वाले समय में भारत के लिए बहुत मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारी कैपेसिटी है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। और नई छोटी जो कंपनियां हैं जो उसके अंदर कलपुर्जे अपने जो को सप्लाई करेंगे, उनके लिए भी एक नई अवसर उनको मिलेगा। और विदेश के लोग भी, जो कंपनियां हैं एयरबस जैसी जो बड़ी कंपनी है, वो भी अगर उनको भरोसा है कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह का विमान बना सकती हैं, तो और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कल बताया कि 1,200 विमानों का जो भारतीय कंपनी है, जो एयरलाइंस है, उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, तो इतने बड़ी जो संख्या में विमान भारत में जिसकी अपनी डिमांड है, अगर उसका काफी बड़ा हिस्सा भारत में बनना शुरू हो जाए और एयरबस जैसी बड़ी कंपनी के साथ कुछ समझौता होता है और 2 साल के अंदर पूरी ये असेंबली लाइन शुरू हो गई है, और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने जो हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपने आने वाले समय में अपने इंजन भी बना के एक नया विमान भारत का भी बना सकते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी नींव इस समझौते से हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी भी देश के साथ, खासतौर से अगर सैन्य सामान के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक साथ करते हैं, तो उसका मतलब यह भी है कि हमारी एक सामरिक साझेदारी उस देश के साथ है।
बिल्कुल
जैसे हमने पहले देखा कि काफी हमारा जो फौजी साजो सामान है हम रूस के साथ खरीदते हैं, और रूस की कंपनीज के साथ ही यहाँ पे कई हमारे जो मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, और भी कई जो हथियार हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं, और हम और कई देशों में उसको बेचते भी हैं। तो यूरोप के देशों के साथ, क्योंकि भारत सबसे बड़ी एक मंडी है जो हथियारों के लिए, खरीदने के लिए, तो हम सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको हम अब एक्सपेंड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि रूस के अलावा दूसरे देशों से हम खरीद भी रहे हैं और उनके साथ अब यहाँ पे बनाना भी शुरू कर रहे हैं।
बिल्कुल
तो इस तरीके से जो सामरिक साझेदारी अगर होती है किसी देश के साथ, तभी वो आपके साथ बेचने को तो कई बार बेच देते हैं, लेकिन बनाना और उनको एक ये तसल्ली हो कि भारत की जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी को कहीं और ट्रांसफर नहीं करेंगी और इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं, कैपेसिटी उनकी है, तो एक नए तरीके से, और जैसे भारत सरकार की जो नीति है जिसमें अभी हमने प्राइवेट सेक्टर को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया है, और कल जब वहां पे उनके प्रधानमंत्री भी भाषण दे रहे थे और एयरबस के जो चीफ थे वो भी भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया कि जो बेस्ट ऑफ स्पेन है वो बेस्ट ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर, जैसे टाटा जैसी बड़ी कंपनी है जिसका अपना एक रेपुटेशन है, उनके साथ मिलके एक नया एक मील पत्थर हमारे संबंधों के लिए जो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग का हम उनके साथ कर रहे हैं, ये एक नया दिशा देता है सिर्फ
जी
स्पेन को भारत के साथ जोड़ने की नहीं, बल्कि भारत को पूरे यूरोप की जो पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके साथ पूरा जोड़ता है। जी
सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो रही है, इसमें स्मार्ट ग्रिड की भी चर्चा हुई, और साथ में कुछ और समझौतों की मैं बात करूं तो रेल परिवहन का आपने जिक्र किया ही, एक और महत्वपूर्ण समझौता वो था सीमा शुल्क को लेकर। तो इन सभी समझौतों में जो पारस्परिक सहयोग है वो आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किस तरह से आपसी जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत करेगा, जैसे कि आपने तकनीकी आदान प्रदान की बात की तो वो कैसे और ज्यादा इससे सुदृढ़ होगा?
देखिए, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जब हम यूरोपीय संघ के किसी भी देश के साथ तकनीकी तौर से या व्यापार और निवेश की जब हम बात करते हैं तो हम उसके दो पहलू देखते हैं। एक तो यह है कि द्विपक्षीय रूप से हम कुछ समझौते उनके साथ कर सकते हैं, जैसे कुछ समझौते इनके साथ हमने किए हैं, लेकिन मोटे तौर से अगर आपको व्यापार की, निवेश की, तकनीक की बात करनी है तो उसमें हमारे यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत हो रही है। जैसा हम जानते हैं कि 2007 से लेके भारतीय और यूरोपीय संघ जो है वो मुक्त व्यापार समझौते के बारे में, उसके बारे में नेगोशिएशन चल रही है। 2021 के बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी की सारे 27 देशों के जो अध्यक्ष जो हेड थे उनके साथ जब बात हुई थी, उसके बाद से नेगोशिएशंस के तीन अलग अलग पहलू हमारे उनके साथ यूरोपीय संघ के साथ चल रहे हैं। वो ट्रेड का मामला है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का मामला है एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का जो मामला है। तो कुछ मामले यूरोपीय संघ के साथ हमारे जब होंगे तो उसका डायरेक्ट तौर से जो है प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों में सभी देशों के साथ पड़ेगा, उसमें स्पेन भी शामिल है। और कुछ ऐसे संबंध चीजें हैं जिन, और उसके साथ हमारा ये भी जानते हैं कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी है हमारा यूरोपीय संघ के साथ, और रिन्यूएबल का जो एक मामला है उसमें सभी यूरोपीय संघ के जो देश हैं उसमें काफी अच्छे तरीके से वो उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, बहुत उनके टारगेट्स अच्छे उन्होंने किए हैं। 2050 तक नेट जीरो तक वो पहुंचना चाहते हैं, कुछ देश उससे पहले भी पहुंचना चाहते हैं, और खासतौर से स्पेन भी उसके अंदर बिल्कुल अपनी जो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है उनको डिजिटल और ग्रीन ट्रांजिशन उनका एक मेक मुद्दा है, जिसके अलावा जिसके ये वो चाहते हैं कि ये उनकी इकोनॉमी को और आगे लेके जाएगा। वही हम भी जानते हैं क्योंकि डिजिटल ट्रांजिशन जो हमारा जो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत के अंदर भी हमारी अपनी कैपेसिटी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, इस तरीके से जो स्पेन की कंपनीज हैं उनकी जो रिन्यूएबल के मामले में जो उन्होंने अपनी महारता हासिल की है, तो उसके साथ कैसे भारत जुड़ पाए, वो सारी बातें मुझे लगता है इस पूरे उनके दौरे के बाद और समझौतों से ठीक तौर से नजर आती है, जिसमें दोनों देशों का काफी फायदा हो सकता है।
2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने की अहम घोषणा हुई है, तो इस सांस्कृतिक पहल से कैसे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव को और ज्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी, और ये कैसे अहम है ये पहल?
पिछले कई दशकों से दूसरे देशों के साथ भी भारत ने अपने सांस्कृतिक संबंधों को बहुत तेजी से बढ़ाया है, और जैसा बता रहे थे वहां पे कि काफी भारतीय मूल के लोग वहां पे रहते हैं, और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल स्पेन के अंदर वहां पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं, यू नो, चाहे वो बार्सिलोना में हो, चाहे वो दूसरे जो बड़े वहां पे जो मैड्रिड हो, और जो बड़े बहुत सारी जगहें वहां देखने को है, तो लोग बहुत जाते हैं। इस तरह से 40-50 हज़ार स्पेनिश टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं, और अभी जो है काफी इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वहां की यूनिवर्सिटीज में भी काफी अंग्रेजी में पढ़ाई होनी शुरू हो गई है। तो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को छोड़ के बाकी यूरोप के देशों की तरफ भी भारत के छात्र भी वहां पे और ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। तो जिस तरह से भारत की अपने जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो हमारा आयुर्वेदा हो, उन सब चीजों का भी, उनमें भी रुचि पहले से ज्यादा बढ़ी है। तो जब सरकारी तौर से अगर आप इस तरह से कोई समझौते करते हैं, ईयर ऑफ स्पेन, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ ईयर ऑफ इंडिया स्पेन, ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो नई तरीके साथ सब टूरिज्म और कल्चर को जोड़ते हुए कैसे भारत और स्पेन के लोगों के बीच में, स्पेन के यूनिवर्सिटीज के बीच में, भारत के यूनिवर्सिटीज के बीच में, भारत के संस्थानों के बीच में, और लोगों के किस तरह से ज्यादा जुड़ाव किया जाए, आई थिंक ये जो पहल की गई है इसका पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में आने वाले समय में बहुत महत्व रहेगा, और दोनों देशों के लोगों को आपस में नजदीक लाने में इसके कुछ योगदान जरूर रहेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन सचदेवा जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और भारत और स्पेन के द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी पर अपने विस्तार से अपने विचार रखे, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत स्पेन के सुदृढ़ होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।